सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन के साथ अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं, ताकि हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेष उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। हमारे जीवन के हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें, और जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आप उनकी भी सहायता करें, ताकि वे भी स्वस्थ भले चंगे होकर आपको धन्य कहने पाएं। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 से 6 पद का अध्ययन करेंगे। आज का विषय है मसीही दान का उदाहरण, मसीही दान का उदाहरण। अब विषय में परिवर्तन आता है। पिछले 7 अध्याय में पौलुस ने परमेश्वर से मिलने वाली सांत्वना के विषय चर्चा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन अध्ययनों द्वारा आपको यह जानकर सांत्वना और बल प्राप्त हुआ है कि आपके मसीही जीवन में आपके पास एक सहायक है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि कहें, पौलुस हमें सांत्वना के बारे में और अधिक बताए। जी हाँ, परंतु वह अकस्मात ही विषय बदल रहा है। अब वह यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए दान एकत्र करने के बारे में चर्चा करता है। वह हमें अब पृथ्वी पर धम से गिरा देता है। विषय मसीही जीवन से बदलकर मसीही दान पर आ जाता है, जो जीवन के एक पक्ष जैसा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यह धर्मशास्त्र अध्याय 8 और 9 का विभाजन इस प्रकार है। आइए देखें। पहला है मसीही दान का उदाहरण, अध्याय 8 उसके 1 से 6 पद। मसीही दान का आग्रह, दूसरा, अध्याय 8 से 7 और 15 पद तक। तीसरा है मसीही दान की व्यवस्था, अध्याय 16 से अध्याय 9 के 5 पद तक। चौथा है मसीही दान के निमित्त प्रोत्साहन, अध्याय 9 उसका 6 पद से लेकर 15 पद तक। मेरे मित्रों, पिछले 20 वर्ष की सेवा के दौरान जो मैंने सीखा है, मैंने मसीही दान पर 3 से अधिक उपदेश नहीं दिए हैं, परंतु हमने इस अंतराल में दान को 2 गुना और 3 गुना बढ़ते हुए देखा है। इससे मेरे विश्वास की पुष्टि होती है कि परमेश्वर की प्रजा एक ऐसी संस्था को सहयोग देंगे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है और उसकी शिक्षा को देती है। मुझे मसीही सेवा में उच्च कोटि या प्रवर्तन और धन संग्रह की योजनाओं से प्रसन्नता नहीं होती है। मेरे विचार में वे किसी भी प्रकार से धर्मशास्त्र आधारित नहीं है। ये 2 अध्याय धर्मशास्त्र आधारित दान के बारे में सविस्तार एवं परिपूर्णता से व्याख्या करते हैं। सच तो यह है कि हमें जो कुछ जानने की आवश्यकता है वह इन अध्यायों में निहित है। नियम तो नहीं है, परंतु दान देने के सुस्पष्ट सिद्धांत यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं जो आपको असामान्य प्रतीत होंगे। आपको यह कहेगा, मैं तो सोचता था कि हमें दशमांश देना है। नहीं, अब यह नियम नहीं है। आप चाहें तो इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए यह नियम नहीं है। इस अंश में जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है अनुग्रह। जी हाँ, इस अध्याय में अनुग्रह 7 बार आया है और अध्याय 9 में 3 बार। दोनों अध्यायों में अनुग्रह शब्द का उपयोग 10 बार किया गया है। अतः इन अध्यायों का विषय है देने का अनुग्रह। मित्रों, मसीही दान के उदाहरण, आइए मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलिसियाओं पर हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं अनुग्रह पर कुछ समय चर्चा करना चाहता हूँ। पहले ही पद में यह शब्द आया है और पद 4 में भी है, जहाँ पर लिखा है, इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पद 6 में फिर से यह शब्द आता है, हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। पौलुस दान देने को अनुग्रह कहता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर के आत्मा द्वारा उत्पन्न स्वभाव है। वह कुरिन्थ के विश्वासियों को बता रहा है कि मकीदुनिया के विश्वासियों को यह अनुग्रह प्राप्त है और वह कुरिन्थ के विश्वासियों से भी ऐसी ही आशा रखता है। मेरे मित्रों, धर्म विज्ञान के विद्वान अनुग्रह को परमेश्वर का अनार्जित पक्ष कहते हैं। मैं उनसे सहमत हूँ, परंतु फिर भी इसकी व्याख्या पूरी नहीं है। इस व्याख्या में इसका मृदु स्वाद जाता रहता है। मैंने धर्मशास्त्र की यूनानी भाषा से पूर्ण साहित्यिक यूनानी भी पढ़ी है और उस भाषा में अनुग्रह का अर्थ है बाहरी लवण्य, जैसे सुंदरता या चारुलता या आकर्षण या दया या सद्भावना या कृतज्ञता या हर्ष या प्रसन्नता। यूनानी भाषा में अनुग्रह के 3 रूप हैं, अच्छा, उत्तम और कुलीन। यूनानी लोग अपनी संस्कृति के बारे में प्रचार की मानसिकता रखते थे और वे इसे मनुष्यों में फैलाना चाहते थे। पवित्र आत्मा ने इस शब्द को चुना और नई आभा और महिमा प्रदान की। तब मसीही लेखकों ने इसे अपनाया। पौलुस इसका बार बार उपयोग करता है। मित्रों, इस परिभाषा को ध्यान से सुने। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का मनोवेग है कि सबके साथ अपनी भलाई बांटे। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर आप पर भली वस्तुओं की वर्षा करता है, अर्थात करना चाहता है, अपनी भलाई प्रकट करना चाहता है। वह आपको कोमल एवं कुलीन बनाना चाहता है, अपने पुत्र की समानता में लाना चाहता है। यही वह अनुग्रह है जिसके बारे में पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। जी हाँ, हम भटके हुए पापी हैं, हमारे पास अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को देने को कुछ भी नहीं है। अतः उसने अपने अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारे उद्धार के लिए उनके मन में आवेग था, वह हमसे प्रेम करता था, परंतु हमें निरंकुश क्षमादान नहीं कर सकता था क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। उसे एक मार्ग खोजना था और वह मार्ग था कि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेज दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर देता है, लेता नहीं। हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा दर्शाते हैं कि परमेश्वर कंगाल है और उसे हमारे दान की आवश्यकता है। जी नहीं, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, वह कंगाल नहीं है। भजन संहिता 50 उसके 10 से 12 पद में कहा गया है, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर भूखा नहीं रहता है। यदि ऐसा होता तो भी वह हमसे नहीं कहता। उसे किसी की या किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आरंभिक कलीसिया दान देने को अनुग्रह कहती थी, यह उनका मनोवेग था। परमेश्वर की आशीषों को अन्यों के साथ बांटने की भावना से वे अभिभूत थे। मेरे प्रियो, पौलुस एक विशेष स्थानीय कलीसिया के बारे में लिख रहा है। हमें यह ध्यान रखना है कि यरूशलेम की कलीसिया पहली कलीसिया थी जिसने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे यरूशलेम से प्रचार आरंभ करके आगे बढ़ें। शिष्य यरूशलेम से प्रेम करते थे और वे सताव आने तक अपने प्रिय नगर में ही बने हुए थे। सताव के पश्चात वे विसर्जित हुए यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। यरूशलेम की कलीसिया सताव के कारण दुर्बल हो गई थी। वहां अकाल भी पड़ गया था जिसके कारण वे दयनीय दशा में थे। अब जब पौलुस तीसरी प्रचार यात्रा में गया तब उसने यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान एकत्र किया था। यह एक आंदोलनकारी अभियान था। प्रचारक कलीसियाएं अपनी मूल कलीसिया को सहायता हेतु दान भेज रही थी, आज इसका विपरीत है। मूल कलीसिया बाहर की कलीसिया को आर्थिक सहयोग भेजती हैं और अपने प्रचारक भी भेजती हैं, परंतु पौलुस के युग में क्षेत्रीय कलीसियाएं मूल कलीसिया को सहयोग प्रदान कर रही थी। पौलुस अब तक कुरिन्थ जाने नहीं पाया था, अतः इस पत्र में वह उन्हें दान देने के विषय में निर्देश देता है। अब क्योंकि वह कुरिन्थ जाने का विचार कर रहा था, इसलिए वह कहता है कि जब वह वहां होगा तब दान के बारे में प्रचार नहीं करेगा और न ही दान एकत्र करेगा। वह वहां पैसों के संबंध में चर्चा करके समय गंवाना नहीं चाहता था। उन्हें उनके आगमन से ही पूर्व दान एकत्र कर लेना था कि जब वह वहां जाए तो केवल वचन की शिक्षा पर ध्यान दे। मेरे मित्रों, यह आज की युक्ति से कैसा विषम है। मैं जहां भी प्रचार करने के लिए जाता हूं, वहां मेरे प्रचार करने के बाद दान उठाया जाता है कि मुझे दिया जाए। यदि पौलुस के निर्देशानुसार चला जाए तो प्रचार या बाइबल शिक्षक की उपस्थिति से पूर्व ही दान एकत्र कर लिए जाएंगे। मैंने आपको परिस्थिति और पत्री की पृष्ठभूमि समझा दी है। स्थानीय परिस्थिति के तथ्य इतिहास बन गए हैं, परंतु पौलुस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी ज्यों के त्यों हैं। मैं तो मानता हूं कि वे आज भी उतने ही प्रभावी एवं नवीन हैं जितने वे पौलुस के युग में थे जब उसने उनका प्रतिपादन किया था। तो मित्रों, आइए हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, मकीदुनिया के विश्वासियों ने अपने कंगाल दशा में भी उनके लिए दान भेजा था। उनके पास अधिक पैसा था, उन्होंने अतिरिक्त बचत या अपने अधिकता में से नहीं दिया था, अपनी कंगाली में से दिया था। मुझे चिंता है कि हम इस प्रकार के दान के विषय में अनजान हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। यदि इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाए तो अधिक अच्छा होगा, अत्यधिक अनुनय विनय के साथ अनुग्रह के विषय में बहुत विनती की। जो दान उन्होंने एकत्र किया वह अनुग्रह था, सहभागिता थी, अर्थात मसीह की बातों या वस्तुओं को आपस में बांटना था। मेरे मित्रों, हम उनके पारस्परिक प्रेम को अंतर्ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम आज कलीसिया में समाज सेवा की बात करते हैं, परंतु मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने अपनी रूढ़िवादी कलीसियाओं में इसे लगभग भुला ही दिया है। प्रचारक सेवा में आर्थिक सहयोग देना एक अद्भुत बात है, परंतु इसका अर्थ क्या यह है कि हम अपनी कलीसिया में आवश्यकता ग्रस्त सदस्यों पर ध्यान न दें। कलीसिया में अधिकांश सदस्य अपनी आवश्यकताओं को प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक व्यर्थ की चर्चा का विषय बन जाएगा। इस कारण वे सहायता लेने से पीछे हटते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक लज्जाजनक बात है। कभी कभी मुझे सहायता करने वालों के नाम कलीसिया की समिति से गुप्त रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पेट में वह नाम नहीं रुकेगा। और ज्यों ही उनकी पत्नियों को पता चला त्यों ही संपूर्ण कलीसिया में उसका प्रसारण हो जाएगा। आज हमने दान देने के इस अद्भुत अनुग्रह को खो दिया है। आइए अब देखिए मकीदुनिया के विश्वासियों ने क्या किया। बड़ी असामान्य बात है यहाँ पर। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है कि उसने तो इसकी कभी आशा ही नहीं की थी। सबसे पहले तो उन्होंने स्वयं को प्रभु को दे दिया, यह मुख्य बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने स्पष्ट ही किसी स्थानीय मसीही सेवा में अपना समर्पण किया था और पूर्ण रूपेण उसमें समा गए थे। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वयं को पौलुस को दे दिया था। इसका अर्थ है कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार में पौलुस की सहायता भी की थी। वे परमेश्वर के लिए उत्साह से भरे हुए थे। अपने प्रथम पत्र में पौलुस ने पुनरुत्थान और स्वर्ग के बारे में चर्चा की थी, जिसे हम अध्याय 15 में पाते हैं। और वे कहने ही वाले थे कि पौलुस उन्हें स्वर्ग के बारे में और अधिक समझाए, परंतु पौलुस ने एकाएक दान का विषय लाकर उन्हें धम से गिरा दिया। पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। वह उनसे सर्वथा व्यवहारिक बात करना चाहता था, और यहाँ एक दूसरे पत्र में वह कहता है कि वे कूड़ कूड़ कर दान न दें। मकिदुनिया के विश्वासियों ने अपने आनंद की भरपूरी से और आर्थिक कंगाली से दान दिया था। यह कैसा अद्भुत परिदृश्य है। परमेश्वर एक हर्षित दानदाता से प्रेम करता है, और हम इसे यहाँ यथार्थता में देखते हैं। यह उनकी सहभागिता थी, उनके पास जो भी था उन्होंने बांट दिया। क्या आज आप ऐसा करते हैं? वे अपने सब आत्मिक आशीषों के लिए यरूशलेम की मूल कलीसिया के ऋणी एवं आभारी थे। उन्होंने उन्हीं सुसमाचार को सुना था, अतः वे अपनी मूल कलीसिया को भौतिक वरदान लौटा रहे थे, क्योंकि उस कलीसिया की दशा अति दयनीय थी। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस लिखता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसका अर्थ है प्रचारक को वेतन दो। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि जिस मसीही सेवा से हमें आत्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। एक पुरुष जो मसीह की संगति से दूर था, उसने हमारा रेडियो कार्यक्रम सुना और परमेश्वर का वचन उसे मसीह में लौटा लाया, और आज जो इमारत थ्रू द बाइबल भवन है वह उसी व्यक्ति की भेंट है। उसने अति आनंद के साथ हमें वह इमारत या बिल्डिंग दान में दी। दान देने की मानसिकता ऐसी ही होना चाहिए। मेरे मित्रों, दान आनंद के साथ दिया जाना चाहिए। हमें हाथ रोकते हुए दान नहीं करना चाहिए, या इसलिए नहीं कि हमें दान देना ही है। हम में दान देने का मनोवेग हो कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों में पहुंचे। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु मंदिर में खड़े होकर भक्तों को दान देते हुए देख रहे थे। मेरे विचार में वह आज भी देखते हैं। धनवान मनुष्य बहुत बड़ी भेंटे ला रहे थे, परंतु वहां एक विधवा स्त्री थी जिसने केवल 2 दमड़ी दान पत्र में डाली। यीशु ने कहा कि उसने सबसे अधिक दान दिया। इसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 41 से 44 पद में पाते हैं। उसने कंगाल होते हुए भी दान दिया, और वही उसका सर्वस्व था। सांसारिक रूप से वे उन 2 तांबे के सिक्कों अर्थात अन्य धनान्य भेंटों की तुलना में कुछ भी नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर का दृष्टिकोण करते हुए प्रकट करते हैं। लुकार्ची सुसमाचार 21 अध्याय उसके 3 से 4 पद में लिखा है कि उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। एक कहावत है, जब दान देने की बात आती है तो कुछ लोग शून्य को छोड़कर रुकते ही नहीं, अधिकांश जन वहीं रुकते हैं। एक बार कहीं पर आराधनालय का निर्माण हो रहा था, वे पैसा उगा रहे थे या जमा कर रहे थे। उनकी कलीसिया में एक धनवान कंजूस था, उसके पास 50 लाख रुपए थे। आप चौंकिए मत, कलीसिया का एक प्राचीन उसके पास आया और पूछा कि वह कितना दान देना चाहता है। उसने कहा, कंगाल विधवा की दमड़ी। अतः जब सभा हुई तो उस प्राचीन ने कहा, भाइयों, हमें जितनी भी आवश्यकता थी उतना पूरा पैसा हमें मिल गया है। हमारे प्रिय भाई हमें 50 लाख रुपया दे रहे हैं। वह विस्मित हो कहने लगा, मैं 50 लाख रुपये देने को नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि मैं विधवा की दमड़ी दूंगा। उस प्राचीन ने कहा, उसने तो सब कुछ दे दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप अपना सब कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर देखता है कि आपने क्या दिया और क्या बचा रखा है। मेरे प्रियो, एक और कलीसिया है जो अपना आराधनालय बनवा रही थी। उत्तरदायी व्यक्ति ने किसी से कहा, मेरे भाई आप कितना देना चाहते हैं? उसने कहा, मैं 300 रुपये देकर चुभन महसूस नहीं करूंगा। इस पर उत्तरदायी व्यक्ति ने कहा, आप 200 रुपए देकर कुछ चुभन महसूस क्यों नहीं करते? आशीष तो तभी आती है जब आपको दान देना चुभे। इसका अर्थ यही है कि देना लेने से अधिक धन्य है। मकिदुनिया के विश्वासियों ने परमेश्वर के निमित्त संपूर्ण समर्पण कर दिया था। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर को आप नहीं मिले तो वह आपसे कुछ नहीं चाहता। यदि परमेश्वर को आप हाथ नहीं देते तो वह हाथ की वस्तु नहीं लेगा। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 8:6 में लिखा है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। पौलुस कहता है कि जिस अनुग्रह अधीन मकिदुनिया के विश्वासी दान देने के लिए प्रेरित हुए थे, उसी अनुग्रह के द्वारा कुरिन्थ के विश्वासी भी प्रेरित हों। किसी भी मनुष्य की अग्नि परीक्षा उसका दान है। किसी ने कहा है कि आराधना के लिए 3 पुस्तकें आवश्यक हैं, बाइबल, गीत की पुस्तक और तीसरा है बैंक की पुस्तक। दान देना परमेश्वर की उपासना है। यदि हमें देने का अनुग्रह नहीं है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके देने की बात को सीखना है और मांगना है कि वह आत्मा प्रदान करे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार दान देते हैं, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन यदि आज आप भी उस विधवा स्त्री की तरह देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको धन्य करे। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप कलीसिया में दान दे सकें, सेवकाई में दान दे सकें, लोगों को उत्साहित कर सकें, जिसके द्वारा से आप आत्मिक आशीषों को अधिकाई से प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही दान की बातों को सीखा है और अपने जीवन में आप इसे अवश्य लागू करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है।
Yeah.